जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम श्रीमद् भागवतम हम श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं, मध्य लीला। अध्याय क्रमांक 22, श्लोक संख्या 54। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लव मात्र साधु संगी सर्व सिद्धि होए, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्री काय। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्व शास्त्रे काय। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्व शास्त्रे काय। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्व शास्त्रे काय। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। माताए साधु संग सर्व शास्त्रे काय। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। शब्दानुशब्दानुवाद भाषांतर एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल्प रूपा जी के द्वारा। शिल्प रूपाद की साधु संग साधु संग, कृपया मेरे पीछे दोहराइए, साधु संग साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग, सर्व शास्त्रे सभी प्रामाणिक शास्त्र कहे कहते हैं, लव मात्र एक क्षण के लिए भी साधु संगी एक भक्त के संग द्वारा सर्व सिद्धि सब सिद्धि है हो जाती है। अनुवाद। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, ज्योतिष गणना के अनुसार लव एक सेकंड के 11वें भाग के बराबर होता है, यानी एक सेकंड के अगर 11 भाग करेंगे तो उसका एक भाग यानी लव है। अगला श्लोक में सिर्फ श्लोक गाऊंगा और उसका अनुवाद पढ़ूंगा। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के मूल्य की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से नहीं की जा सकती, तो भौतिक संपत्ति के रूप में सांसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक न एक दिन मरना ही है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. దప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామో హరే రామో రామ రామో హరే హరే. హరే కృష్ణ. तो सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी भक्तों का रविवार के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी भक्तों के चरणों में आपके आशीर्वाद एवं प्रार्थनाओं की कामना करता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत ये भगवान के ही अवतार हैं जो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं. इसके ऊपर कुछ चर्चा करना या इसके ऊपर कुछ उपदेश करना केवल एक ही हेतु के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा स्वयं का हृदय का शुद्धिकरण हो, भगवान प्रसन्न हो और आप सभी के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो. तो आप देखेंगे कि शास्त्र में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं कि भगवान के एक शुद्ध भक्त के संग से एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है. इतना परिवर्तन होता है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है. जैसे हमारे अभी नियमित जो भागवतम में चर्चा हो रही है, तो श्री नारद मुनि अपने करुणावश प्राचीन बरही महाराज का उद्धार कर रहे हैं और नारद मुनि तो पूरे शास्त्र में उनका वर्णन प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से अलग अलग बद्ध जीवात्माओं को जब वो अपने करुणा का लक्ष्य बना लेते हैं तो उनकी मन बुद्धि और उनका जो संस्कृति है उसके अनुसार उनको उचित डोज बोलिए, इंजेक्शन बोलिए, दवाई बोलिए, औषधि बोलिए, उपचार बोलिए, ऐसा देते हैं कि वो बराबर भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं. चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे कि जब हरिदास ठाकुर के बारे में रामचंद्र खान एक वेश्या को श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करवाने के लिए भेजते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उन्हें पता चल जाता है कि इनकी क्या इच्छा है, मगर फिर भी वहां पर 3 रात वो ठहरते हैं और अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप से उस वेश्या को भगवान का शुद्ध भक्त बना देते. फिर हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक निमाए थे तो उनके पास एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, अभी मराठी में पिल्लू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, पिल्ला ही बोलते हैं, कुत्ते का जो पिल्ला है उस वो निमाए के करुणा का लक्ष्य बन जाता है और 1 या 2 दिन में ही वो चतुर्भुज प्राप्त कर वैकुंठ धाम चले जाता है. यहाँ हम देखते हैं कि एक कुत्ता शिवानंद सेन के करुणा के लक्ष्य बन जाते हैं और वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं. हम देखेंगे कि हमारे निजी जीवन में हमारा जो व्यक्तिमत्व बनता है वो व्यक्तिमत्व बनने के लिए बहुत अलग अलग आधार है, घटक है, जिसके कारण हमारा एक व्यक्तित्व बनता है। सबसे पहले तो हमने पूर्व जन्म में क्या क्या अच्छे बुरे कार्य किए हैं, या क्या क्या इच्छाएं थी, शायद पहले जन्म में नहीं हुई मगर अभी तक है, उसके अनुसार हमें जो वर्तमान देह है वो प्राप्त होता है। मगर उसके साथ साथ अगर माता पिता वैदिक शास्त्र का कठोरता से पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्रों के ऊपर अगर दशविध संस्कार किए हैं, खास करके गर्भाधान संस्कार, तो हम देखेंगे कि वो संस्कार के माध्यम से वो बालक का बालक बढ़ता है और उसकी इच्छाएं बदलती है। जैसे हम देखते हैं हर शनिवार रविवार जब इतने सारे छोटे बच्चे हमारे कांग्रेगेशन भक्तों के सुबह मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन आरती में आते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु पूजा में नृत्य करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सुवर्ण वरदान है कि वो अपने भक्तिमय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बीज यहाँ पर बो रहे। जब मैं मेरे स्वयं के निजी जीवन का इतिहास देखता हूँ तो पता चलता है अगर बचपन में इतने अच्छे संस्कार होंगे तो बड़ा बनकर वो बच्चे कितने अच्छे प्रभावशाली भक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से फिर है माता पिता। माता पिता किस संस्कृति से आए हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन में रुचि है या नहीं, ये अलग अलग उनके मूल्य, उनकी संस्कृति, उनकी अच्छी या बुरी आदतें, उसके अनुसार एक व्यक्ति का व्यक्तिमत्व बनता है। फिर हम देखेंगे अध्यापक, शिक्षक, उनका क्या चरित्र है, वो किस प्रकार से केवल शालेय शिक्षा नहीं देख रहे मगर अपने स्वयं के उदाहरण से एक प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। फिर होते हैं मित्र, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, है कि नहीं, या हिंदी में कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जिस प्रकार के एक व्यक्ति के मित्र परिवार है उस प्रकार से भी उसके मूल्य, उसके गुण या उसके जीवन का लक्ष्य तय होता है। उसके बाद है उस लड़के ने या लड़की ने अपने जीवन में क्या क्या चीज अपनी, या छंद बोलते हैं मराठी में या उर्दू में शौक बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आदतें या हॉबीज बनाते हैं, उसके अनुसार भी उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व बनता है। अभी हो गया व्यक्तिमत्व, व्यक्तिमत्व जैसा वो व्यक्ति का बढ़ते रहता है उसी प्रकार से वो मनोभाव अपने बुद्धि में लेकर समाज में विचरण करता है। वो अगर मनोभाव सकारात्मक है तो वो अपने लिए और अन्यों के लिए बड़ा सहायताकारी होता है, अगर वो विनाशकारी है तो वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक विघातक घटक बन जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस करे। तो स्वॉट यानी क्या, एस यानी स्ट्रेंथ, यानी हमारा सामर्थ्य कहां पर है, हमारे पास अच्छे गुण कौन से हैं, वीकनेस यानी क्या, हमारे कौन से दुर्गुण हैं, हमारे में कौन सी बुरी आदतें हैं, अपॉर्चुनिटीज यानी हमारे अच्छे सामर्थ्यों के अनुसार हमें क्या क्या संधि उपलब्ध है, और थ्रेट्स यानी हमारे कमजोरियों के कारण ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे लिए विनाशक हो सकती है। परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज एक साधक भक्त के लिए दो चुनौतियां बताते हैं। वो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसगिविंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी शास्त्र की ठीक ठीक समझ न होना, और दूसरा है मिसगिविंग। तो मिसगिविंग को मैं हिंदी में तो नहीं बोल सकूंगा, उसका विश्लेषण करेंगे हम हिंदी में। तो मिसगिविंग यानी क्या, वो कहते हैं सबसे पहले तो हमें पता नहीं रहता है भक्ति क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, भक्तों का संघ क्या होता है, भक्ति का महत्व क्या होता है। उसके बाद ऐसी स्थिति आते है कि हम भक्ति में तो लग जाते हैं, भक्ति करना चालू भी कर देते हैं, मगर हमारे पूर्व जीवन के, उसमें दोनों हैं, इस जीवन और पहले जन्म के जो बुरे संस्कार हैं, वो बुरे संस्कारों के कारण बुद्धि तो स्वीकार करता है क्या करना चाहिए, मगर मन नहीं स्वीकार करता। और क्योंकि मन स्वीकार नहीं करता है तो एक साधक भक्त भक्तों के संग में रहते हुए भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाता है। और ये सब समझने के लिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे रामायण से, जिससे हमें पता चले कि ये सब हमारे जीवन में कैसे लागू होता है और उसके लिए क्या उपाय है। तो जो चंद्र देव है उनके पुत्र हैं पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश परंपरा में जान्हो नाम के बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं। जान्हो ये वही श्रेष्ठ ऋषि होते हैं जो अपने क्रोध के कारण पूरी गंगा मैया को पी लेते हैं, और फिर भागीरथी उनको निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वजों का थोड़ा उद्धार करना है, आप कृपा करके शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, हमें बड़े बहुत सारे हमारी पीढ़ियां चली गई उस गंगा को लाने के लिए, और अभी वो गंगा आपके पेट में है तो कृपा करके उसको बाहर निकालिए। तो जान्हो मुनि अपने कान से गंगा को फिर बाहर निकालते और गंगा का नाम जाह्नवी हो जाता है। उनके पर पोते थे यानी पोते का पुत्र, उनका नाम है कुश, और कुश के पोते थे गाधी, और गाधी के पुत्र थे कौशिक। तो ये जो कौशिक थे ये बड़े राजा थे, और एक दिन होता ऐसे है कि ये कौशिक राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनके 100 पुत्र है, उनकी पूरी सेना है, और शिकार करके जब सब हो गया अभी वापस आ रहे तो अचानक उनको प्यास लगता है। तो वो देखते हैं अरे एक छोटी सी कुटिया है, क्यों ना हम अपनी प्यास शांत करें। तो अंदर जैसे जाते हैं तो वहां पर वशिष्ठ ऋषि होते, जैसे ही वशिष्ठ ऋषि देखते कि कौशिक राजा यहां पर प्रवेश किया है तो बड़े प्रसन्न हो जाते, बोलते आप तो हमारे अतिथि है, और अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा एक देवी देवता जैसी होनी चाहिए, इसलिए हम आपका सेवा करना चाहते। तो कौशिक राजा को मन में थोड़ा ये होता है, वो थोड़े प्रश्न में पड़ जाते, बोलते इतना छोटा सा आश्रम, मेरे तो पुत्र ही 100 है, सेना की तो बात बाद में, हम लोग बैठेंगे किधर, क्या आदर आतिथ्य करेंगे। कुछ बोलते नहीं, वो बोलते बस एक ग्लास पानी दे दीजिए हम चले जाएंगे। तो कहते नहीं आपको आना ही है, बैठना ही है, सबको लेके आइए, हम आपको पूरा भोजन खिलाएंगे। तो बोलते कि ऋषिवर है, विरोध नहीं कर सकते, कह रहे हैं तो थोड़ा मान लेते हैं। तो सबको बुला लेते हैं, तो जहां जहां खाली जगह है वहां पे सबको बिठा देते हैं, और फिर अपनी कामधेनु गाय शबला को बुलाते हैं, और शबला को बोलते हैं कि सभी को आप अच्छे से भोजन प्रसाद परोसो, और फिर शबला अपने स्वामी की इच्छा पूर्णी करते हैं। उनके शरीर से एक एक प्लेट निकलती है, और एक प्लेट में कम से कम 100 आइटम्स रहते हैं। शायद हम भी 15-20 आइटम्स भी देख के ही हम खुश हो जाएंगे, है कि मगर वो एक प्लेट में 100-100 व्यंजन रहते हैं, और सबको अच्छे से बिठाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। मगर जब कौशिक राजा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनकी आंखें शबला के ऊपर रहती है। वो कहते ये कैसे संभव है कि इतनी सुंदर कामधेनु ये इस गरीब छोटे से ऋषि के आश्रम में है, ये गलत है, ये इनके लिए उपयोगी नहीं है, क्या करेंगे इनको सेवा में लगा के, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वशिष्ठ ऋषि को बोलते हैं गुरुदेव हम आपको 1 करोड़ गाय देंगे। कितने गाय देंगे? 1 करोड़। सब युवा अच्छे स्वास्थ्य के, बहुत शुद्ध दूध देने वाले, और आपके सब यज्ञ याग का पूरा सामग्री का कार्य अच्छे से हो जाए। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि नहीं, हम इसी में संतुष्ट हैं। तो इनको लगता है कि शायद ठीक से बार्गेनिंग नहीं हो रहा है ना, शायद मैंने जो ऑफर दिया वो इतना अच्छा नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं, हम आपको 14,000 हाथी देंगे, 800 सोने के रथ देंगे, 11,000 घोड़े देंगे और 1 करोड़ गाय देंगे। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, आपकी ये जो 800 सोने के रथ है उसको मैं क्या करूं, मैं तो ऋषि हूं, मेरा कार्य भगवान के लिए तपस्या करो, है कि नहीं, शास्त्रों का पठन करो और लोगों को वो सिखाओ, तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ये जो गाय है ना, ये किसी ने मुझे ऐसी दान में नहीं दी है, स्वयं भगवान विष्णु ने दी है, तो ये मैं विष्णु की संपत्ति के रूप में देखता हूं और मैं इनको कहीं नहीं, किसी को भी कभी भी देना नहीं चाहता। तो अभी कौशिक का जो क्या बोलते हैं क्रोध वेग है वो निकल जाता है, नियंत्रण से बाहर चला जाता है। बोलते ऋषिवर ये समझिए, हम यहाँ के राजा हैं और राजा असली स्वामी है यहाँ के राज्य की सारी संपत्ति का, इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं करते, चुपचाप खड़े रहते। तो कौशिक राजा को बोलते हैं, कौशिक राजा सोचते क्या आदमी है, बोला तो थोड़ा उत्तर तो देना चाहिए। फिर गुस्से में आकर वो स्वयं उस गाय को अपनी भुजा से जोर से पकड़कर खींचना चालू करते। तो वशिष्ठ ऋषि शांत है। तो शबला को आश्चर्य लगता है कि मेरे स्वामी मेरे से नाराज है, मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या अपराध किया जिसके कारण ये राजा मुझे जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध लेके जा रहा है और मेरे स्वामी कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए वो 2-3 बार अपने स्वामी की तरफ देखती रहती है। तो वशिष्ठ ऋषि उनका मन समझते हुए कहते हैं कि ये शबले, ये मेरी इच्छा नहीं है कि ये राजा आपको लेके जाए, मगर ये मेरे स्वामी हैं तो मैं इनका विरोध नहीं कर सकता, मगर आप चाहे कि आप नहीं जाना चाहते तो आप अपना स्वयं का संरक्षण स्वयं कर सकते हैं। जैसे ही शबला ऐसे सुनती है तो तुरंत पहलवा नाम के बहुत सारे सैनिकों को अपने शरीर से निकालती है और बड़ा महायुद्ध वहां पर शुरू होता है। मगर कौशिक राजा के सारे सैनिक वो सभी सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। तो अभी जितने पहलवा सैनिक नहीं थे उससे हजारों गुना ज्यादा सैनिकों को वो अपने शरीर से उत्पन्न करती है और वो सैनिक कौशिक राजा का पूरा सैन्य परास्त कर देता है। कौशिक राजा ने अपने जीवन में कभी पराजय देखी नहीं थी। तुरंत अपने 100 पुत्रों को बोलते हैं, वो वशिष्ठ का आप वध कर दो। अभी वशिष्ठ ऋषि को समझता नहीं कि हमने तो कुछ बोला नहीं, हाँ बोला नहीं, ना बोला नहीं, हमने तो कुछ वैष्णव आचार संहिता का उल्लंघन किया नहीं, तो हमारे ऊपर गुस्सा क्यों? तो वो यज्ञ विधि में ही लगे रहते हैं, वो केवल क्रोध से हुंकार करते। जैसे ही हुंकार करते हैं 100 के 100 पुत्र वहीं पे जलकर खाक हो जाते हैं। अभी केवल बचा कौशिक राजा। क्रोध, जीवन में कभी कुछ बोला है और किसी ने नहीं किया ऐसा हुआ ही नहीं था, और ये एक ऋषि है वो भी छोटी सी कुटिया का, और उसने सैन्य को मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, इतना क्रोध होता है। मगर बुद्धि भी है तो कुछ करते नहीं है, वैसे ही क्रोध से उधर से निकल जाते हैं और मन में रहता है प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध है ना, खून का बदला खून, है कि नहीं? हमारे 100 पुत्रों की हत्या की, ये वशिष्ठ की हत्या नहीं की तो नाम का कौशिक नहीं। महल में जाते हैं केवल कपड़े बदलने के लिए, कपड़े बदलते एक साधु तपस्वी का वेश धारण करते हैं, जिस पैरों में कभी नंगे पैर जंगल का अनुभव किया नहीं वो पैर घने जंगल में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। कहते हैं आज मैं व्रत लेता हूं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा और ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसे अस्त्र प्राप्त करूंगा कि वो वशिष्ठ का वध मेरे ही हाथों से होगा। बहुत वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते क्या चाहिए? बोलते जितना सारा अस्त्र इस सृष्टि में होगा वो सब दे दीजिए, सब दे देते हैं। बोलते एक तो रह गया ब्रह्मास्त्र, वो भी दे दीजिए, वो भी दे देते। बोलते एक आशीर्वाद दीजिए, एक युद्ध के लिए जाने वाला हूं, विजयी भव बोल दीजिए बस। तो भगवान शंकर भी तो वैष्णवानाम यथा शंभो है, वो हंसते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा करके चले जाते हैं। अभी पूरे जोश के साथ इधर उधर किधर भी नहीं, सीधा जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कहाँ है वो वशिष्ठ? मैं आया हूं मृत्यु के रूप में, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। और जब वो आश्रम दिखता है तो आश्रम को ही नष्ट कर देते, एक अस्त्र डाल देते, पूरा उधर बाहर का परिसर जलकर राख हो जाता है। तो सब शिष्य लोग डर के मारे भागने लगते इधर उधर। वशिष्ठ ऋषि को बोलते कुछ तो संकट है। वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो जाते, जैसे बाहर आते हैं तो देखो अगर आपके मन में किसी के विषय में क्रोध है और अभी उसको तो मैं मृत्यु के ही घाट पहुंचाऊंगा, है कि नहीं, मृत्यु के द्वार पहुंचाऊंगा, और वो व्यक्ति सामने आ जाए तो पूरी ताकत जोश आ जाता है कौशिक राजा को। बोलते अभी तो इनका विनाश ही होगा। अगर वशिष्ठ ऋषि जब बाहर आते हैं तो उनके पास एक बांबू रहता है, सात गाठी का बांबू। तो पहले गाय थी, अभी बांबू है। तो थोड़ा आश्चर्य लगता है बांबू किस लिए लेके आए। बोलते ठीक है जो भी होगा। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते आपको कुछ आचार संहिता का पालन पता है? कुछ कारण नहीं, कुछ नहीं, आश्रम को क्यों विनाश किया आपने? और आप क्या मुझे ललकार रहे? आपके पास है ही क्या सामर्थ्य जो आप मुझे ललकार सकते? ये सब सुनकर पूरा आग चला जाता है सर पर। बोलते तैयार रहो युद्ध के लिए, एक एक अस्त्र निकालते और छोड़ना चालू करते। वशिष्ठ ऋषि शांत रूप से अपना वो बांबू हाथ में लेके खड़े रहते, जो भी अस्त्र निकलता है उस बांबू के प्रति आकर्षित होता है, विनाश हो जाता है। एक दो तीन चार पांच सैकड़ों अस्त्र नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म होता है। बोलते क्या बांबू है ये? निकालते हैं ब्रह्मास्त्र, छोड़ते हैं। बोले इस ब्रह्मास्त्र में तो ये बांबू क्या, ये वशिष्ठ क्या, ये ऋषि क्या, सब होलसेल में चला जाएगा। जैसा ही अस्त्र छोड़ते हैं तो अस्त्र का तेज से सब लोग चकाचौंध हो जाते हैं और फिर वो अस्त्र थोड़ी देर के लिए उधर रुकता है, वो भी आकर्षित हो जाता है बांबू की ओर, वो भी चला जाता है बांबू में। वशिष्ठ ऋषि बोले हो गया समाधान? इतना क्रोध, इतनी हताश अवस्था लेकर कुछ भी बोलते न हुए पैर पटक पटक कर वहां से निकल जाते। बोलते पहली बार गाय, दूसरी बार बांबू, अभी और चांस नहीं लेना है। बोलेंगे हम बनेंगे तो ब्रह्मर्षि, हम बनेंगे तो ब्रह्मर्षि, उससे नीचे और कम कुछ नहीं। ये वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है ना, ब्रह्मर्षि बनेंगे। और जाते हैं जंगल में कठोर तपस्या करने के लिए। कितने सारे वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न होते तो पता है ब्रह्मर्षि का पद तो ब्रह्मा जी से मिलने, मतलब बड़े खुश होकर ब्रह्मा जी को वंदन करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे अभी ब्रह्मर्षि कहा जाएगा। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं आपने इतनी कठोर तपस्या की इसलिए आप आज राजर्षि हो गए। तो बोले ये लो, इतनी तपस्या की और हुआ राजर्षि, ठीक है। बोले धन्यवाद। कुछ बोलते नहीं, अपनी तपस्या जारी रखते। तो उसी समय इक्ष्वाकु वंश में एक राजा होता है जिसका नाम है त्रिशंकु, और ये त्रिशंकु राजा बड़ा प्रसिद्ध रहता है उसके सौंदर्य के लिए। वो इतना सुंदर रहता है कि जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाता है। तो वो क्या करता है, अपना एक कक्ष बनाता है और उस कक्ष में क्या है, सब जगह सिर्फ आईने रखे हैं और उसके सामने अपना स्वयं का दर्शन लेते रहते हैं। और फिर वो कहता है मेरी ये इच्छा है कि इसी शरीर से मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो जब ऐसी इच्छा आती है तो उसे लगता है, आप देखेंगे कभी भी हम में से कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, सब साधक भक्त हैं, हमारे मन में अगर कोई विचार आ जाए कि इस प्रकार से कोई एक सेवा होनी चाहिए तो क्या लगता है, ये तो भगवान ने प्रेरणा दी, परमात्मा ने प्रेरणा दी है कि नहीं, इससे अच्छी सेवा तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, और जिस तरीके से मैं करूंगा इससे और अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार त्रिशंकु महाराज सोचते हैं कि इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता, बोलते चलो अभी इसी शरीर में स्वर्ग जाएंगे। तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु हैं वशिष्ठ ऋषि, जाते उनके पास, उनके चरणों में गिरते हैं, बोलते गुरुवर आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या चाहिए, स्वर्ग जाना है। बोले बहुत अच्छा, तो उसके लिए यज्ञ याद करना पड़ेगा। हाँ मगर इसी शरीर में जाना है। बोले क्यों, क्योंकि मेरा इतना अच्छा सौंदर्य है, वो लोगों को भी इंप्रेस करूंगा उधर जाके। तो वशिष्ठ ऋषि क्रोध से लाल होते हैं, बोलते हैं देखिए शास्त्र में जो बताया है उसके विपरीत हम कुछ इच्छा होगी तो करना नहीं चाहिए, शास्त्र ही हमारे आधार है, मार्गदर्शक है, उनका पालन करना चाहिए। मगर इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, चुपचाप निकल जाते हैं। बाद में वशिष्ठ ऋषि के जो 100 पुत्र हैं उनको सेपरेटली मिलते हैं और बोलते हैं हमारी ऐसी इच्छा है। तो वो पुत्र बोलते हैं आज तक हमारे पिताजी ने ऐसा कभी सिखाया नहीं था कि इसी जन्म में कोई स्वर्ग में जाता है। तो बोलते बोलते बेचारा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, बोलते हाँ आपके पिताजी के पास भी गया था। ऐसा गुस्सा हो जाते हैं सबके सब पुत्र, बोले हमारे पिताजी के पास जाने के बाद आपकी ये हिम्मत कैसी हुई कि वही कार्य आप हमसे करवाने वाले, हमारे पिताजी केवल पिताजी नहीं हमारे गुरु है और गुरु की आज्ञा हम कभी उसका विरोध नहीं करेंगे या मर्यादा का उल्लंघन हम कभी करेंगे नहीं। तो बोले आप इस प्रकार से गुरु में अश्रद्धा रखते हैं इसलिए आज हम आपको शाप देते हैं कि आपका ये जो सौंदर्य है ये पूरा नष्ट हो जाएगा और आपका ऐश्वर्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। वो शाप खत्म ही नहीं हुआ तो पूरा काला कलूटा शरीर आ जाता है, सब कपड़े चिंधी चिंधी हो जाता है, फटे कपड़े जाते हैं, बड़े टेंशन में आते हैं, राजमहल में दौड़ते हैं, बोलते हैं थोड़ा अभी तबीयत ठीक करना पड़ेगा, कुछ तो शाप मिल गया है। तो सैनिक एक जोर से लात लगाते, बोले किसके महल में जा रहे हो, बोले मेरा महल है। किसका महल है, बोले कौन है आप, भिखारी भी नहीं लगते, बोले आपसे तो भिखारी लोग भिक्षुक अच्छे रहते, बोले। तो समझ में आता है कि इतना बड़ा शाप मिल गया कि अभी राज्य भी नहीं संभाल सकते। तो बड़े हताश होकर जाते हैं विश्वामित्र मुनि के पास, जो कौशिक राजा थे। विश्वामित्र मुनि के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। तो विश्वामित्र मुनि अपने दिव्य बुद्धि से पता कर लेते कि हाँ आप सही हैं, कह रहे आपकी ये दुखमय परिस्थिति किससे हुई, बस इसी प्रश्न की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। बोल रहे वो वशिष्ठ ऋषि उनके कारण हो गया। जैसा ही वशिष्ठ नाम कान में आता है तो विश्वामित्र की ज्वाला भड़क जाती है, बोले क्यों क्या हुआ, कुछ नहीं, बोले उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, उनको बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, स्वर्ग में जाना है, इतना ही है कि इसी शरीर में जाना है, सुना ही नहीं, फिर उनके पुत्रों ने शाप दे दिया। तो बोलने लगे मगर आपका तेज और तपस्या तो बहुत विशेष है, बोले क्या आप मेरी मदद कर सकते, यही सुनना था विश्वामित्र मुनि को। तुरंत बोले क्यों नहीं हम कर देंगे, और बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान लगाते हैं। अभी उनके कितने पुत्र थे इसका अंदाजा नहीं है, या वो 100 पुत्र जो मरे उनका क्या हुआ वो भी मैंने वर्णन पढ़ा नहीं है। इधर भी उनके 100 पुत्र रहते हैं जब ऋषि के रूप में तपस्या करते हैं, सभी पुत्रों को भेजते हैं, बोलते सभी ऋषि मुनियों को बुलाओ, बड़ा यज्ञ याग का अनुष्ठान होगा और हर एक ने आना चाहिए, और जो भी मना करता है ना उसको मार करके रखो, उसको स्पेशल गिफ्ट देंगे। तो सब दिशा में सभी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास आते हैं, उनके पास तो जाने की हिम्मत नहीं, उनके पुत्रों के पास जाते हैं, तो पुत्र भी मना कर देते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं वो 700 जन्म एक आदिवासी के रूप में जीवन जिएंगे, क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और अपनी आंख तेज करके जो सारे उपस्थित ऋषि मुनि थे उनके ऊपर डालते तो सब लोग बोलते बज गए, बुलाया तो आ गए। ये ऐसा यज्ञ कभी इतिहास ने किसी ने सुना नहीं था कि ऐसा यज्ञ करो कि इसी शरीर में उसको स्वर्ग में भेजो। तो किसी की आने की इच्छा नहीं थी, मगर डर था विश्वामित्र का, इसलिए आ गए सब लोग। जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, अलग अलग देवताओं को आमंत्रण देने लगे, कोई आने के लिए तैयार नहीं। बोले शास्त्र के विपरीत है, हम नहीं आएंगे। तो बोले कोई आए ना आए, हमें क्या सरोकार है, हम अपना कार्य करेंगे। और यज्ञ विधि चालू हो जाता है, उनका तेज इतना बढ़ता है। फिर जिस जो चम्मच रहता है जिसको पड़ी कहते हैं, इस चम्मच से वो आहुति डाल रहे हैं, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान, श्री श्री गौर निताय भगवान, शिल प्रभुपाद की, जिस पड़ी से वो आहुति डाल रहे हैं उसको अचानक वो ऊपर करते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। जैसे वो ऊपर करते हैं, सबके सामने त्रिशंकु ऊपर उड़ने लगता है और सब आश्चर्य करते हैं और सब बोलते हैं विश्वामित्र मुनि की जय, विश्वामित्र मुनि की जय। त्रिशंकु को विश्वास नहीं होता कि इसी शरीर में सीधा का सीधा अपना डिस्पैच हो रहा है कि नहीं। कोई वाहन नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हवा ऊपर आता है तो प्रेशर इतना बड़ा रहता है कि उसकी त्वचा फटने लगती है, उसे लगता है मेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मगर आगे साइन बोर्ड लिखा है प्रवेश द्वार स्वर्ग, तो बोलते थोड़ा सहन कर लेंगे। प्रवेश द्वार तक पहुंच ही जाते हैं तो वहां के सैनिक इंद्र को बोलते महाराज ये कौन आ गया काला कलूटा, थोड़ा देखिए। तो इंद्र आते और बोलते ये मुझे पता है, बोले ये त्रिशंकु है। बोले आप शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप ऊपर नहीं आ सकते। एक धक्का लगा देते, जितने स्पीड से आया था उसके ज्यादा स्पीड से उल्टा होके नीचे आने लगता है। तो अब तक विश्वामित्र मुनि का जय जयकार चल ही रहा था तो वो बोलते रक्षा करो रक्षा करो। बोले कौन है, तो देखते त्रिशंकु महाराज आ रहे। तो फिर से अपना वो चम्मच ऊपर उठाते, फुल स्पीड से जाता है, अभी विदाउट स्टॉप सीधा स्वर्ग के एंट्री डोर पे खड़ा होता है। तो इंद्र भी बोलते हैं वापस वापस आना जाना क्यों, उधर ही खड़े रहते। आता है फिर से ढकेल लेते। अब तक इसकी स्वर्ग में जाने की इच्छा पूरी हो जाती है। बोलता है महाराज विश्वामित्र मुनि आप नीचे बुला लीजिए हमें। वो हो ही नहीं सकता, बोले आपको क्यों नीचे बुलाने का, फिर वशिष्ठ के ऊपर हमारा कैसा जमेगा। बोले आपको तो हम भेजेंगी। तो त्रिशंकु साधन हो जाता है विश्वामित्र की ईर्ष्या का। और उसका बेचारे का पृथ्वी से स्वर्ग के बीच में फुटबॉल चालू हो जाता है। बाद में विश्वामित्र मुनि को पता चलता है कि मैंने ये जो किया है ये गलत कार्य है, मेरी शक्ति के परे है। फिर भी और एक गलती कर देते, बोलते वो इंद्र ने स्वीकार कर रहा है, और एक स्वर्ग बना लेंगे आपके लिए। त्रिशंकु के लिए अलग स्वर्ग बनाते हैं, बोले आपके लिए अलग इंद्र रहेगा, आप जो बोलेंगे वो सुनेगा। पूरा स्वर्ग बन जाता है और जैसे ही बनता है तो उसका रह पाना कठिन होता है। और विश्वामित्र मुनि समझ जाते हैं कि अगर ये स्वर्ग को मैं नहीं संभाल पाऊंगा तो मेरा तो विनाश निश्चित है। तो तुरंत भगवान विष्णु को स्मरण करते, प्रार्थना करते कि हमारी गलती हो गई, कृपा करके हमें बचाइए। तो भगवान विष्णु दर्शन देते, बोलते चिंता मत कीजिए, हम इस स्वर्ग की रक्षा करेंगे, मगर कृपा करके ऐसे शास्त्र के विपरीत इसके आगे मत कीजिए, हम आपको बचा नहीं पाएंगे। और विष्णु भगवान कहते हैं ये जो आपका डिसाइपल है वो कभी सीधा खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि इंद्र को दुखी किया है तो हमेशा उल्टा ही रहेगा। तो इस प्रकार से त्रिशंकु अपने स्वर्ग में अपने काले कलूटे शरीर के साथ हमेशा के लिए उल्टे ही है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की अवस्था कितने हद तक हो सकती है अगर वो अपने कलुषित बुद्धि के ऊपर ज्यादा आश्रय ले। उसके बाद विश्वामित्र मुनि की बहन है, उनका नाम है कौशिकी, और उनके पति है ऋषिका ऋषि, और उनके 3 पुत्र थे। उनके जो बीच के पुत्र है उनका नाम है शुनक्षेप। तो होता यह है कि अम्बरीश महाराज नाम के एक महाराज रहते हैं, और वो यज्ञ विधि कर रहे हैं। उनके यज्ञ विधि की प्रवीणता देख के इंद्र को भय हो जाता है और इंद्र सोचने लगता है कि हो सकता है कल जाकर ये इंद्र न बन जाए। इसलिए जैसा पृथु महाराज का घोड़ा चुराया, वैसे उनका भी जो यज्ञ का प्राणी है उसको चुरा लेते हैं। तो उनके जो पुरोहित गुरु है वो बहुत गुस्सा हो जाते, बोलते आप ही जिम्मेदार है, बोले अम्बरीश महाराज को बोलते, अगर आप इस प्राणी के जगह ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो स्वेच्छा से कहेगा कि मैं यहां आहुति में बलि जाने के लिए तैयार हूं, तो ही आपको माफ कर सकते हैं, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। तो अम्बरीश महाराज सोचते करने गए थे एक हो गया दूसरा क्या करे, तो बड़ी प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पर आकर, पृथ्वी पर ही अलग अलग जगह जाते हैं, क्या करे क्या करे। तो उन्हें पता चलता है ऋषिका ऋषि के बारे में कि इनके तीन पुत्र है और पिता बड़े पुत्र को प्रेम करते हैं और पत्नी छोटे पुत्र को प्रेम करती है, मगर बीच वाला जो है बेचारा उसको कोई प्रेम ही नहीं करता। तो लोग बोलते थोड़ा बोलो आपका बीच वाला पुत्र दे दो आहुति के लिए। तो बोले अरे वाह अच्छा आइडिया। तो बड़े उत्साह के साथ जाते ऋषिका ऋषि को बोलते कृपा करके आपका पुत्र हमें दान में मिल सकता है, ऐसा सब संकट आ गया। तो ऋषिका ऋषि बोलते क्यों नहीं, हमारे बीच वाले पुत्र को लेके जाइए। तो जब सुनश्यप ये देखता है कि मेरे माता पिता को मैं नहीं चाहिए, वो ये नहीं देखता कि ये शास्त्रों का विधान है और साधु का कर्तव्य है कि किसी के भले के लिए अगर हम हमारा शरीर भी क्यों ना दान दे दे तो वो क्या कहेंगे, वो बहुत सम्माननीय कार्य है। वो भावुक हो जाता है, बोलता है अरे कैसे पिताजी है, बोलते लेके जाओ, माँ भी बोल रही है चले जाओ, बड़ा हताश हो जाता है। और ऋषि के पुत्र है तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, बोलते आप जैसा बोलेंगे वैसे जाएंगे, आहुति में बलि चढ़ जाएंगे, भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे, बोलने के लिए बोलते अंदर से दुखी रहते। फिर वो जाते हैं तो सुबह निकलते हैं रथ से अपने राज्य की ओर जाने के लिए, तो दोपहर में एक जगह पर विश्राम करने के लिए अम्बरीश महाराज उठते, बोलते हम यहाँ पर थोड़ा फलाहार करके विश्राम करेंगे नदी के किनारे। तो वो तो विश्राम करते इनको क्या नींद आएगी, बोलते अभी क्या होगा, मृत्यु तो दरवाजा खटखटा रहा है। तो वहां पे एक दो लोग चलते रहते, उनके बोलते कोई ऋषि मुनि है क्या इधर, हाँ बोले यहाँ पे विश्वामित्र मुनि है। तो विश्वामित्र नाम तो सुना लगता है, थोड़ा देखते हैं, देखते हैं तो उनके मामा ही है जिनका नाम कौशिक है। तो जैसे विश्वामित्र मुनि उनको देखते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते आपको क्या संकट है, आप चिंतित लग रहे हो, पूरा कथा बता देते हैं। तो विश्वामित्र मुनि अपने जो 100 पुत्र है उनमें से एक को बोलते हैं कि ऐसा करो ये तो हमारे बहन का पुत्र है ना, इसको हम रक्षा करेंगे, आप में से एक चले जाओ। तो वो बोलते हम क्यों जाए, है आपके बहन का पुत्र, हमें नहीं मरने की इच्छा। तो विश्वामित्र मुनि के जीवन में पहली बार जो उनका नाम है विश्वामित्र वो सार्थक करते, वो करते हैं आपके जीवन का धिक्कार है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भले के लिए अगर कुछ करता नहीं है केवल अपने ही लिए जीता है, अरे उसकी निंदा तो पेड़ तक करते हैं, आप मनुष्य होने के लायक नहीं है। अपने ही पुत्रों को श्राप दे देते हैं कि अगले जन्म में आप सब आदिवासी बन जाएंगे। सुनश्यप बोलते ठीक है वो तो हो गया मगर मेरा क्या। तो विश्वामित्र मुनि बोलते आप चिंता मत कीजिए, उनको दो मंत्र देते, बोलते एक मंत्र गाएंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरे गाएंगे तो ब्रह्मा भगवान, गाते रहिए जब आपको बुलाएंगे उधर तब, जब आप प्रवेश करने के लिए जाएंगे दोनों प्रकट होकर आपको रक्षा कर देंगे, यज्ञ विधि अच्छा हो जाएगा, आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। सुनश्य बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विश्वामित्र मुनि को और चले जाते हैं यज्ञ के लिए। अम्बरीश महाराज अभी तक सोए, बोलते उठिए महाराज यज्ञ के लिए जाना है। तो अम्बरीश महाराज सोचते क्या व्यक्ति है, जा रहे खुद बलि होने के लिए, हमें उठा रहे, बोले ठीक है चलिए। जैसे ही सब तैयारी हो जाती है, उनको लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, अभी वो प्रवेश करेंगे ही, बोलते रेडी, हाँ बोले रेडी, और तुरंत मंत्र गाने लगते हैं। इतना भक्तिभाव और तीव्रता से प्रार्थना करते हैं कि इंद्र और ब्रह्मा वहां पर खड़े हो जाते और कहते यज्ञ सफल हो गया और आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। तो उस समय सुनश्यप विचार करने लगते हैं कि मेरा तो मृत्यु हो गया था, मुझे जीवन किन से मिला? विश्वामित्र ऋषि से। तो कहते मैं तो मेरे माता और पिता के लिए तो मैं मर गया हूं, तो उनके पास तो जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो वो प्रेरणा लेते हमारे उनके मामा से, उनके मामा बैठे तपस्या के लिए ब्रह्मर्षि बनने के लिए, बोलते हम भी तपस्या करेंगे लोगों को भगवान की भक्ति देने के लिए। और वो तपस्या कर आगे जाकर बड़े महर्षि होते हैं और वो शुनश्चेप महर्षि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कितने सारे ग्रंथों की रचना की जिससे लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। बाद में तो हम सबको पता है कि फिर से विश्वामित्र ऋषि तपस्या में बैठे रहते हैं, इंद्र को डर लगने लगता है, इंद्र मेनका को भेजते, मेनका बोलते गुस्सा हो गया तो नहीं, बोले आप बहुत सुंदर है, कोई गुस्सा नहीं करेंगे। जाते हैं तो मेनका के सौंदर्य से आकर्षित होकर 10 वर्ष केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं विश्वामित्र। 10 वर्षों के बाद फिर से वो जागरूक हो जाते हैं, अरे ये गलत जगह पर है, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो इतना गुस्सा आता है, बोलते अभी इस मेनका को कुछ तो शाप देते हैं। मेनका डरने लगती है, फिर वो सोचते हैं मेनका भी तो एक माध्यम है, गलती तो मेरी है कि मैं उनके शरीर से आकर्षित होके अपनी साधना को छोड़ दिया। तो कुछ बोलते नहीं, फिर से तपस्या में लगते हैं। फिर से इंद्र को टेंशन आता है, रंभा भेजते हैं, तो रंभा बोलते अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी थोड़ा साथ में रहिए। तो वो भी आते हैं मोर या किसी पक्षी का रूप लेके। तो जैसे ही रंभा को आवाज दिखते सिर्फ उनके नुपुर का, तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं एक बार गलती हुआ दूसरी बार नहीं करेंगे, आंख खोल के सीधा शाप देते हैं, आप पत्थर बन जाओ। तो वो बेचारा इंद्र उधर से पिछले गली से भाग जाते हैं, बोले हमें शाप नहीं चाहिए। और फिर ये सब होते होते एक दिन हो जाता है कि विश्वामित्र ऋषि ब्रह्मर्षि हो गए। ब्रह्मदेव आते हैं और बोलते विश्वामित्र उठो, आज आशीर्वाद प्राप्त करो कि आप ब्रह्मर्षि हो गए। तो जब सुनते हैं कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया, बहुत बड़े आनंदित हो जाते हैं। मगर ब्रह्मर्षि किसके लिए बने थे? वशिष्ठ को टक्कर देने के लिए ना। तो बोले ठीक है, आपने तो कहा, बोले उनको बुलाओ, उनको बुलाओ और उन्होंने हमारा सत्कार करना चाहिए कि हम अभी ब्रह्मर्षि हो गए। तो वशिष्ठ ऋषि को आमंत्रण दिया जाता है, वशिष्ठ ऋषि आते हैं। तो जब वशिष्ठ ऋषि को वो देखते हैं तो वो बड़े अचंभित हो जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि के चेहरे पे ना तो क्रोध है, ना असुरक्षितता है, ना स्पर्धा का भाव है, भगवान के शुद्ध भक्ति में बड़े प्रसन्न है, आनंदित है और भगवान का आश्रय अनुभूत करते हुए आनंद के साथ आ रहे और विश्वामित्र मुनि की तरफ देखते हुए बड़े प्रसन्न है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं वो अपने आंखों और स्मित हास्य से दे रहे हैं। तो फिर विश्वामित्र ऋषि को लगता है कि आज तक जो किया शायद कुछ गलती किया मैंने, कुछ तो गलती है, ये वशिष्ठ के पास कुछ है जो आज मेरे पास ब्रह्मर्षि होने के बाद भी नहीं है। तो जैसे वशिष्ठ ऋषि उनके पास आते, बोलते आप थोड़ी देर रुकिए। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आप मेरा सत्कार कीजिए बाद में, मगर हमारी एक इच्छा पूरी कीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि बोलते क्या करें? बोले हम आपके चरणों का पाद प्रक्षालन करना चाहते। और फिर विश्वामित्र ऋषि जिस वशिष्ठ ऋषि की हत्या करने के लिए ब्रह्मर्षि बनने के लिए बैठे थे, उसी वशिष्ठ ऋषि के पादों का प्रक्षालन करते, उनके पैर धोते, उनका चरणामृत लेते हैं और कहते हैं आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मगर मेरे मन में स्पर्धा, असुरक्षित भावना ये सब लेकर मैं इतने वर्ष जी रहा था, इसलिए मैंने आपको मेरा हितचिंतक या गुरु के रूप में कभी देखा ही नहीं, मैंने केवल आपको अपना शत्रु ही समझा, तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिए। और वशिष्ठ ऋषि अपने उनको अपने गले लगा लेते हैं और उसी रात को विश्वामित्र मुनि को भगवान साक्षात्कार देते हैं कि असली आनंद कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हो उसमें नहीं है, असली आनंद है भगवान की भक्ति में और वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम चाहे अपने आप को कितना ही संतुष्ट करने का प्रयास करें, कभी नहीं हो सकते। मगर जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान की संतुष्टि में हमें ज्यादा संतुष्टि है। उनको याद आने लगता है कि किस प्रकार से वो त्रिशंकु का स्वर्ग जब नष्ट होने वाला था, तब मुझे लग रहा था मेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैंने विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मुझे सहायता की। वो भगवान की कृपा का पहला इंस्टॉलमेंट था। और आज जो ये साक्षात्कार हो रहा है मेरे हृदय में, वशिष्ठ ऋषि के प्रति आदर प्रेम सेवा भाव हृदय में जागृत हुआ है, ये भगवान का दूसरा इंस्टॉलमेंट है। वो बोलते और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वही विष्णु भगवान रामचंद्र के रूप में, दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं, उनके पास जाएंगे, नाटक करेंगे कि हमें रक्षा की मदद चाहिए, बोलेंगे कि हमें भगवान रामचंद्र दे दो हमारी सेवा के लिए, मगर उनको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर देखेंगे वो जो चर्चा होता है, उस चर्चा में एक संदर्भ ऐसा आता है कि दशरथ महाराज बोलते मेरे पुत्र की रक्षा मेरे से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो कहते अरे आप ये क्या सोच रहे हैं, शिव जी के पास जितना होलसेल में सब कुछ है वो है मेरे पास, इस पृथ्वी का कोई एक असुर नहीं है जो मेरे से लड़ सकता है, तो आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। अगर वो राम की रक्षा कर सकते हैं तो उनको राक्षसों की रक्षा के लिए राम की क्या आवश्यकता है, कॉमन सेंस है ना। मगर भगवान की लीला शक्ति से नहीं समझ में आता, दशरथ महाराज बोलते ठीक। और फिर ऐसा कहा जाता है कि ये रामायण का जो बाल कांड इसे कहा गया है, ये बाल कांड के मुख्य नायक भगवान राम नहीं है, विश्वामित्र मुनि है। वो विश्वामित्र मुनि जो क्रोध स्पर्धा असुरक्षितता अपने हृदय में लेके लोगों के विनाश के ऊपर तुले थे, वही विश्वामित्र मुनि एक भगवान के भक्त हो जाते हैं। और ऐसा वर्णन आता है रामायण में कि तपस्या कितना ही करो, परिश्रम कितना ही बोलो, करेंगे, यह समर्पण था विश्वामित्र ऋषि के हृदय में। मगर भगवान एक व्यक्ति है, उनके प्रसन्नता के लिए वो जो चाहे वो हम करेंगे, ऐसे एक व्यक्तिमत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन का समर्पण करें, ये भाव विश्वामित्र मुनि में नहीं था। जब भगवान राम उनके साथ रहने लगते हैं तो भगवान के सौंदर्य के आकर्षण से, उनके गुणों के आकर्षण से विश्वामित्र मुनि को कितने सारे पहलू सीखने के लिए मिलते हैं। ऊपरी ऊपरी तौर पर ऐसा दिखता है कि विश्वामित्र ऋषि भगवान को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, मगर असली बात तो यह है कि भगवान विश्वामित्र ऋषि को भगवान का शुद्ध भक्त कैसा होता है, उसके हृदय में क्या भक्तिभाव और सेवा भाव होता है वो सिखाते हैं। इस प्रकार से तो हम देखेंगे, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का पूर्व कर्म, उसके माता पिता ने किए हुए संस्कार, उसके शिक्षक, उसके मित्र या उसके छंद या हॉबीज, उसके कारण उसका व्यक्तिमत्व बनता है, इसका यहां पर हम क्या देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि एक कौशिक राजा के रूप में केवल अहंकारी थे। जो कुछ दिखेगा वो मेरे लिए चाहिए, ये अहंकार का चश्मा पहनकर वो घूम रहे थे। इसलिए वो वशिष्ठ ऋषि का महानता नहीं समझ सके। वशिष्ठ ऋषि का एक ब्रह्मर्षि के रूप में जो आदर और उनका स्वातंत्र्य सम्मान करना चाहिए वो नहीं समझ सके। मगर उन्होंने ही व्याख्या कर लिया कि वशिष्ठ मेरे शत्रु है। वशिष्ठ ने कभी बोला नहीं, कभी कहा नहीं, कभी कुछ किया भी नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में एक असुरक्षितता थी। क्या असुरक्षितता थी? सबसे बड़ा व्यक्ति होना चाहिए तो वो केवल मैं ही होना चाहिए, मेरे से दूसरा कोई बढ़कर नहीं हो सकता। बाद में हम देखते हैं कि त्रिशंकु जो है वो अपने सौंदर्य और अहंकार से उसकी आंखें अंधी हो गई और अपने गुरु की अवज्ञा तक उसने किया, और जिसके लिए हम देखते हैं वो और फिर वही ईर्ष्या का साधन बना विश्वामित्र मुनि का, और उन दोनों को अपने जीवन में बड़ी असहाय परिस्थिति में उन्होंने डाल दिया, अपने अहंकार, स्पर्धा और ईर्ष्या के कारण। फिर हम देखते हैं कि मेनका जो है एक काम भावना का प्रतीक है, मगर काम भावना, काम वासना केवल पुरुष स्त्री आकर्षण इतनी ही नहीं है। काम वासना उसे कहते हैं कि जहां पर भी व्यक्ति उसे आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसे शास्त्र में काम कहा गया है। तो ये केवल पुरुष या स्त्री के प्रति वो तो एक रूप है, मगर ये काम वासना अलग अलग रूप में हर एक साधक भक्त के जीवन में आ सकती है, केवल पुरुष ही नहीं स्त्री के जीवन में भी आ सकती है। और ये काम वासना किसी के लिए 10 वर्ष के लिए संकट में डाल सकती है, या किसी को जन्मों जन्मों के लिए संकट में डाल सकती है। रंभाक तो क्रोध का प्रतीक है कि क्रोध के कारण विश्वामित्र का अपना लक्ष्य से वो विचलित हो गए। एक बात बताना भूल गया कि जब भी उनका ऐसा क्रोध या कामवासना होती थी तो जितनी सारी उन्होंने तपस्या की है उसका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता था। एक विशेष गुण है विश्वामित्र ऋषि का कि वो डटे रहे, छोड़ा नहीं कभी। होना है तो ब्रह्मर्षि होना है। हालांकि वो ध्येय इतना ठीक नहीं, मगर फिर भी उनकी प्रामाणिकता और तीव्रता थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें तो कितना अच्छा लक्ष्य मिला है। तो एक भक्त ने कभी अपने भक्ति के प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। अगर हजारों हजारों सालों के लिए विश्वामित्र मुनि इतनी सारी असफलताओं के बावजूद प्रयास कर रहे हैं, तो हमें तो प्रभुपाद बोलते हैं एक जीवन के लिए प्रयास करना है ना, तो मृत्यु तक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर हम देखेंगे कि विश्वामित्र ऋषि के जीवन में संघ का प्रभाव। तो हम देखते हैं कि कौशिक राजा क्रोधित हुआ था वशिष्ठ ऋषि के प्रति ईर्ष्या और असुरक्षितता के भाव से, मगर आनंद की बात यह है कि लक्ष्य अच्छा था कि करूंगा तो वशिष्ठ के जैसा करूंगा, है ना। तो उसने तो बोला था वशिष्ठ मेरा शत्रु है, मगर एक्चुअली वशिष्ठ उनके हीरो थे, उनके आदर्श थे, वो समझ नहीं पाए। तो जितनी भी असफलता आएगी हमेशा सोचते थे वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, वैसा ही करेंगे। और जब वशिष्ठ ऋषि का वो भगवान के शरणागति में आनंद देखते हैं, तो वो असली में उनका साधु संगति का प्रक्रिया पूरा हो जाता है। कि अगर ये भगवान के चरणों में आनंद लेना चाहते हैं, इसका मतलब ब्रह्मर्षि पद है वो भी कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, हम भी भगवान के चरणों में आनंद के लिए प्रयास करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। होता ऐसा है कि विश्वामित्र ऋषि के कारण ही सीता का स्वयंवर होता है, भगवान रामचंद्र और सीता का विवाह तय होता है, सब कुछ रेडी हो गया, जनक महाराज खुश हो गए, तभी भगवान रामचंद्र एक बॉम्ब डाल देते हैं। बोलते हालांकि स्वयंवर जीता है, मगर सीता का हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी को ये सब कुछ पता ही नहीं है। आपको पहले हमारे पिताजी को संदेश देना पड़ेगा, वो हाँ कहेंगे तो ही ये विवाह होगा, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र ऐसा बोल जाते हैं, सबका एकदम बीपी बढ़ जाता है। तुरंत वहां पर विश्वामित्र ऋषि बोलते कि एक सैनिक, एक संदेश वाहक लेके जाओ, जो बड़ा प्रामाणिक है, तपस्वी है, नॉनस्टॉप सीधा दशरथ महाराज के पास पहुंचना चाहिए। जाते हैं तो दशरथ महाराज खुश होते हैं, पूरी दशरथ महाराज की प्रजा आ जाती है उनके साथ मिथिला नगरी में विवाह समारंभ के लिए। अभी विवाह की तैयारी चालू ही है तो अचानक वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ऋषि की तरफ देखते हैं और सबका फिर से धड़कन बढ़ने लगती है। सोचते अभी क्या होगा, पुरानी दुश्मनी फिर से तो चालू नहीं होगी। वो बोलते आप थोड़ा इधर आइए, तो विश्वामित्र ऋषि उनके पास जाते हैं, दोनों बहुत अंतर जाते हैं, बड़े समय के लिए चर्चा करते हैं, उनके हाव भाव, हाथों की जो सब कुछ उनके जेस्चर्स है, हाव भाव कहते हैं उसे, वो देखते हुए दशरथ महाराज और जनक महाराज दोनों टेंशन में आते हैं, बोलते क्या है, लग रहा है कुछ बड़ी चर्चा हो रही। थोड़ी समय में बड़े आनंद से वो आ जाते हैं वापिस। और फिर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हमारा, हम दोनों का ये इच्छा है, क्या है, हम दोनों की इच्छा है कि भगवान रामचंद्र का विवाह सीता से होगा, फिर आपकी जो दूसरी कन्या है उर्मिला उसका विवाह लक्ष्मण के साथ होगा, और आपके जो भाई है कुशध्वज राजा उनकी जो कन्या है मांडवी उनका विवाह भरत के साथ होगा, और उनकी जो दूसरी कन्या है श्रुतकीर्ति उसका विवाह शत्रुघ्न से होगा। तो जब ये सब सुनते हैं तो वो जो टेंशन था वो टेंशन चला जाता है और एक बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव का वातावरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक भक्त अपने साधक के जीवन में बड़ा अनर्थ से संघर्ष चलता रहेगा, मगर वही साधना भक्ति में हम श्रद्धा से उत्साह निश्चय धैर्य और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शनों में अगर हम चलते रहे तो जो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के घनघोर शत्रु थे वही विश्वामित्र मुनि आज वशिष्ठ ऋषि के साथ आकर भगवान का आनंद चार गुना करते हैं। ग्रंथराज श्री रामायण की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नितय गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्ण। कृपया बैठे रहिए, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। सबसे पहले आज ये इतनी सुंदर राम कथा हमारे नाम प्रभु ने की, उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जजूरी में भी बहुत जोरदार प्रचार करते हैं, वहाँ करीब करीब 25 परिवार है जिन्होंने, उन्होंने 16 माला तक लाया है। आज देखा होगा कि आज कितना मधुर कथा इन्होंने किया। आइए हम उनको हृदय पूर्वक धन्यवाद देंगे, 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज का मराठी क्लास 11:30 बजे हिज ग्रेस उरुक्रम कृष्ण प्रभु द्वारा। आज श्रीमान राधेश्याम प्रभु का जो कृष्ण रसायन होने वाला है वो इंग्लिश में 11 से 1 होगा कृष्ण लीला के ऊपर, और शाम को 8 बजे हिंदी में होगा। आप सबको जैसे आपके काउंसलर्स के माध्यम से और SMS के थ्रू समझ पता चला होगा कि आज हम लोग गुंडीचा मार्जन महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये गुंडीचा मार्जन महोत्सव 1:15 बजे शुरू होगा। गुंडीचा मार्जन महोत्सव करीब करीब 4 बजे तक चलेगा। इसके लिए आपको 1:15 बजे के पहले भक्ति वेदांत हॉल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां आपको आपका जो जिसके साथ आपको सेवा करना है, किस एरिया में सेवा करना है उसके बारे में बताया जाएगा, क्या सेवा करना है वो भी बताया जाएगा, और सेवा के बाद के लिए कूपन दिया जाएगा, स्पेशल स्नैक्स कूपन प्रसादम है, सेवा के बाद में है तो 4 बजे है, ये कूपन भी आपको दिया जाएगा। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि ये गुंडीचा मार्जन महोत्सव जिस दिन इधर पुरी में होता है उसी दिन हम यहाँ होता है। ये बहुत सौभाग्य है हमारे सबका, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे मित्र परिवार के साथ ये सेवा में हमें लगना है। स्पिरिचुअल टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट की ओर से ये अनाउंसमेंट है। अगला बुक है भगवद गीता चैप्टर 5 ओरिएंटेशन क्लास, आज 10 बजे है कॉन्फ्रेंस हॉल भक्ति वेदांत मॉडल स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में। 2 जुलाई मतलब मंगलवार के दिन हम मनाने जा रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर डिसअपीयरेंस डे। इस दिन फास्टिंग उपवास रहेगा दोपहर तक, 12:45 बजे तक रहेगा। फेस्टिवल शेड्यूल जो है 11 बजे भजन और कथा होगी, और 12:20 को पुष्पांजलि होगी, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसादम होगा। 4 जुलाई गुरुवार के दिन हम मनाने जा रहे हैं व्यास पूजा सेलिब्रेशन हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी का। यह समय है शाम को 5:30 बजे भक्ति वेदांत हॉल में, सभी भक्तों को इसके लिए आमंत्रण है। हरे कृष्णा।